बाबा की मुरली में इस सीजन में मुरलियों में कौन सी लहर चल रही है? मुख्य लहर है बाप समान। और एक बात जो बाबा बार बार कहते आ रहे हैं, संकल्प और समय। और एक बात जो बाबा बार बार कहते आ रहे हैं, अचानक होगा इसलिए एवर रेडी। और एवर रेडी का अर्थ भी बता दिया। ऐसे नहीं सभी हाथ उठा देते, हम तो तैयार हैं बाबा चलो, लेकिन बाबा लेने आ जाए तो कहेंगे बच्चे की शादी करा के चलेंगे, थोड़ा ठहर जाओ बाबा, अब छोटे बच्चे हैं जरा पढ़ रहे हैं, वो बड़े हो जाएं फिर चलेंगे। तो जो बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे वही साथ चलेंगे। बहुत क्लियर। कोई ऐसे ही अपने को बहलाए न रखे कि हम भी साथ चलेंगे, इसलिए तपस्या करनी है। तो दो बातें मुख्य थी बाप समान बनने के लिए भी, जिसकी बाबा रिजल्ट लेंगे और जिसके लिए कहा रोज शाम को चार्ट चेक करो रात को, एक अमृत वेला, दूसरा मन की दिनचर्या। मन को बिजी रखो। किसमें बिजी रखेंगे? मनन ही नहीं केवल, और बताओ कर सकते हैं सारा दिन मनन? है प्रैक्टिकल हो सकता है? किसमें बिजी रखेंगे बोलो? अब इन दो बातों पर ही हम प्लान बनाते हैं। अमृत वेला हमारा ऐसा हो जाए जो हम भी खुश और बाबा भी खुश। क्या कहा बाबा ने, कैसी स्थिति होती है, कैसी होनी चाहिए? लाइट माइट स्वरूप, हल्का होता है ना, कभी कोई ना कोई इफेक्ट होता है ब्रेन पर, एक इस पे चर्चा कर लेते हैं। दूसरा दिनचर्या। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे चीजों को, किस किस को समय और संकल्पों पर ध्यान रहता है, हाथ उठाएंगे? ठीक है, बाकी को ध्यान देना है। मैं देखता हूं बहुत लोगों को पता ही नहीं कि उनका टाइम वेस्ट होता है। बहुत माना 95% को पता नहीं है, केवल 5% लोग ऐसे हैं जिन ध्यान रहता है इन बातों में, टाइम जा रहा है हमारा। और संकल्पों की बात इससे भी सूक्ष्म है, कोई दो चार आत्माएं इस पे ध्यान रखती हैं, हमें ध्यान देना है। कोई पूछे तुम कौन हो, क्या फायदा होगा इससे? कौन कौन उत्तर दे सकते हैं ये? पर बाबा ने तो सबको कहा, थोड़ों को नहीं कहा, केवल ग्रुप को नहीं कहा, सबको कहा। कोई पूछे तुम कौन हो तो क्या कहो? कौन कौन कह सकते हैं? कहना तो है ना, उठाओ हाथ, इसमें क्या लज्जा? अगर कहेंगे तो बन जाएंगे। कोई हमसे पूछता है कौन हो, हम बाहर बता देते हैं ना, भाई ब्रह्मा कुमार हैं। रियलिटी है ना, कभी टाइटल से हम वैसा बन जाते हैं, कभी करने से टाइटल को प्राप्त कर लेते हैं, दोनों बातें हैं। अगर हम सोचेंगे हम तीव्र पुरुषार्थी हैं तो निश्चित रूप से बल मिलेगा और हम बनते जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी किसे कहते हैं? मेरे को कितने फोन आए होंगे कल सवेरे, परसों, आज भी, तीव्र पुरुषार्थी बाबा ने कहा, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो इसका मतलब क्या है, लोग ये पूछते हैं, क्या मतलब है इसका? तीव्र पुरुषार्थी माना, तीव्र पुरुषार्थी माना, देखो सीधी सी बात, ये ऐसी चीजें हैं जिनको सुन के लोगों को समझ में नहीं आता। फालो फादर इसमें तीव्र पुरुषार्थ की क्या बात हुई, हम तो 70 साल से करते आ रहे, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। तो एक ने आज मेरे से पूछा, मैं भी जल्दी में था, मैंने उसे कहा 4-5 घंटे रोज योग का चार्ट होना चाहिए। कहा यह तीव्र पुरुषार्थ है क्या? कहा यही है, बस इतना करो गति तेज हो जाएगी। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी चीज को हम रियलाइज करें जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत लोग ब्राह्मण परिवार में ऐसे हैं जिनको अपनी कमजोरियों का पता नहीं चलता। हमें पता चलना चाहिए, पहला कदम है। बहुत अहंकार है लोगों में, उसे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, उसे दूसरे लोगों को विघन पड़ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि मेरा अहंकार है। वो सोचते हैं मैं तो यज्ञ को लॉफुल चलाने के लिए ये सब कर रहा हूं, है अहंकार। उन्हें बिल्कुल पता नहीं, आभास ही नहीं कि ये उनका अहंकार है। क्रोध आता है, उन्हें क्या रहता है, करना पड़ेगा नहीं तो ये काम नहीं करते। वो अपने क्रोध को भी मान्यता दे रहे हैं। दो चीजों की बात मैंने की, हमें अपनी कमजोरियों का पता चलना चाहिए कि हम पर चिंतन में बहुत समय देते हैं, हम दूसरों को देखने में समय दे रहे हैं, हम में अलबेलापन आता है, हमें अपने पुरुषार्थ लक्ष्य पर कम ध्यान है, हमें पता होना चाहिए। बहुतों को पता नहीं है। मेरे से कोई बात कर रहे थे, मैंने कहा कुछ लोग जीवन पूरा कर रहे हैं कि बाबा के बन गए, जीवन समर्पित कर दिया, अब तो पूरा करना है ना एंड तक, लेकिन जीवन में कोई खास लक्ष्य नहीं है। हम सभी जीवन का खास लक्ष्य बनाएंगे। तो तीव्र पुरुषार्थी माना अपनी उस कमी को जल्दी जल्दी भर लेना। मान लो कोई अलबेला है अमृत वेले उठने में, बहुत अलबेले होते हैं, या योग करने में अलबेले होते हैं, तो हम चुस्त करें अपने को, ये तीव्र पुरुषार्थ है। हम संकल्प करें कि हमें ये मिस नहीं करना है, हमें इसको एंजॉय करना है, हमें बाबा से फुल ले लेना है सब कुछ सवेरे सवेरे, ये तीव्र पुरुषार्थ है। एक ही बात को जीवन भर लेके चलते रहना, तो ये कमी थी जब ज्ञान में आए थे, जब शरीर छोड़ेंगे ये कमी साथ जाएगी, ऐसे भी तो बहुत महारथी है ना, है या नहीं? ऐसे बहुत हैं, जब आए थे जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। तो हम अपने कदमों को तेज करें। कदमों को तेज करने का सबसे सुंदर तरीका है मन की दिनचर्या बनाना। केवल मनन नहीं, योग के अभ्यास, बाबा ने तो ऐसे ही कहा मनन में, पर मनन भिन्न भिन्न तरीकों से। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मन की दिनचर्या बनाना चाहेंगे, जो चाहेंगे, सबको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, मुझे खुश नहीं होना है, खुश सबको होना है, बनाएंगे पक्का? क्योंकि दिनचर्या बनाने में, उसको फॉलो करने में बड़ा आनंद है, और एक बार यदि आत्मा उस रस को चख ले तो उससे मिलने वाला आनंद आत्मा को बार बार प्रेरित करेगा वही करो। तो देखो मेरे पास भी एक दिनचर्या है, मैं बहुत बनाता रहता हूं अपनी अलग अलग, मैं उसके भी कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं, और आप अपने ढंग से अपने पुरुषार्थ के अनुसार बिल्कुल सरल भी बना सकते हैं। जिनसे कुछ भी नहीं होता मैं उनके लिए कहूंगा कि सारे दिन के लिए हर घंटे में एक स्वमान का अभ्यास, जिनसे ये भी भारी लगता हो वो 1-2 स्वमान ले ले सारे दिन के लिए, उसको अभ्यास करते रहे। ये है उनके लिए जिनसे कुछ भी पुरुषार्थ नहीं होता, और जो तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं। आज की मुरली में था अश्रतन कौन है, सोना 108, 16,000 तांबा। तो मेरे से एक भाई अभी पूछ रहा, मैं जल्दी में था, मैं उत्तर तो उसे नहीं दे पाया, कहा ये कैसे कह दिया बाबा ने, 108 को बाबा सोना कहता था आज चांदी कह दिया 108 भी तो विजयी रतन है ना, महान आत्मा है, सतयुग के राजा महाराजा हैं, आज बाबा ने उनको चांदी कह दिया तो ये तो भगवान की अपनी लहर, और इसका सीधा सा अर्थ है कि 8 को मिलता है गोल्ड मेडल, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और 108 को सेकंड पोजीशन, 100 को, और बाकी 16,000 को थर्ड पोजीशन, इसलिए बाबा ने ये नाम दिया। तो उसका कहना था कि सत्ययुग में तो सभी सोना हैं तो सही, परंतु सोने में भी कितनी क्वालिटी है। आज भी माताएं बताएं कितनी है, मुझे नहीं पता, माताओं को पता होगा कितनी है। एक 24 का अच्छा, 22, 23, 20 ऐसे नीचे कहां तक, 8, 18 तक है, 14 भी। तो देखो कैटेगरीज हो गई ना, लेवल हो गए। तो सतयुग में भी ऐसे ही होंगे, सोने के महल होंगे, किसी किसी के चांदी के भी होंगे, बाबा ने कह दिया, किसी के ईंटों के भी होंगे, उसके ऊपर चांदी लगा दी जाएगी, चांदी का पत्रा, ये भी होगा, ये सब होगा अलग अलग। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा वैसा सबको प्राप्त होगा। तो हम सभी दिनचर्या बनाएंगे। देखो मैंने ऐसे किया है, मैं बनाता हूं हमेशा घंटे वाइज आवरली, और उसमें आजकल के नए जो बाबा की एक्सरसाइज हैं वो भी रख लेते हैं। सवेरे 3 से मैं शुरू कर देता हूं, 3:30 उठें, 3:15 उठें, जब भी पहले 5 स्वरूप, मैं आपको वो अभ्यास बता देता हूं और उसको आप अपने अपने अनुसार सेट कर लेना। दो तरीके हो सकते हैं, पहले भी हम ये चर्चा यहाँ कर चुके हैं। आप अपने कर्मों की एक लिस्ट बना लो, 16 कर्म लिख लो। कुछ कर्म ऐसे हैं जो नेचुरल शरीर से जुड़े हुए हैं, हम पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, भोजन खाएंगे, स्नान करेंगे, हैं कपड़े पहनेंगे, ये भी कर्म है ना। अपने और भी काम हर एक को अपने अपने घरों में होते हैं, माताएं भोजन बनाएंगी, सफाई करेंगी, कपड़े धोएंगी, ये भी काम होते हैं। यज्ञ में अलग अलग काम आपको हैं, उनकी भी आप एक लिस्ट 16 कम से कम बना लो, और उसमें एक एक अभ्यास को जोड़ दो कि जैसे ही हम ये काम शुरू करेंगे तो हम ये अभ्यास करेंगे। टेलीफोन की घंटी बजेगी तो हम ये अभ्यास करेंगे, हो सकता है ना। हालांकि थोड़ा मेहनत का काम है, आज मैंने देखा, मैंने फिक्स किया हुआ था टेलीफोन की घंटी बजेगी तो मैं ये याद करूंगा, लेकिन वो इतनी बजी कि मुझे भुला दिया उसने। मैं सोच रहा एक बंदी नहीं हो रही पूरी तो दूसरी बज रही, वेटिंग में आ रहा है, इतनी ज्यादा आई तो मुझे भुला दिया। मैं सोचता था कि है तो काम थोड़ी मेहनत का, पर अगर मनुष्य ध्यान दे तो सब काम सहज होते हैं। सवेरे मैं आपको एक राय दूंगा, सभी घूम फिर कर 5 स्वरूपों का अभ्यास अवश्य करें। सबके पास तो जगह होगी ना थोड़ी भी घूमने की, थोड़ी भी जगह हो आपके, ये तो बहुत बड़ी है यहां से यहां, इसे आधी भी है, तो राउंड लगा लो। एक राउंड में आत्मा, दूसरे राउंड में मैं देवता, तीसरे में इस देव देवी, चौथे में ब्राह्मण, पांचवे में फरिश्ता, ऐसा कई बार कर जाओ। इससे फ्रेश भी हो जाएंगे और एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। सबको ये याद रखना है कि एकांत हमारे तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या है, वरदान है। जरूरी तो है ही, वरदान है। मैं खुद करता हूं, जब मैं देखता हूं ना मजा सा नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है अच्छे अभ्यास करते मजा नहीं आता, ये होता है सब। तो मैं कुछ छोड़ के शाम को और सवेरे भी घूम के ये सब अभ्यास करता हूं, तो एक बार करने में ही आनंद आने लगता है। एक बार माना आधा घंटा कर लिया घूम फिर के अच्छे अच्छे अभ्यास, इसको सभी महत्व दें। अमृत वेले अच्छे न होने का एक कारण शारीरिक भी है, समझते हैं आप। किसी को डायबिटीज है, थकान होगी, नींद आएगी, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, उसका भी यही हाल होगा, पेट गड़बड़ है तो बिल्कुल नहीं होगा, दिमाग फ्रेश ही नहीं होगा, गैसीज होती है, एसिडिटी हो गई, कब्ज हो गई, और कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, नींद अच्छी नहीं हुई, तो भी सवेरे अच्छे विचार नहीं चलेंगे, ब्रेन फ्रेश, विचार उड़ान भरने वाले हों तो अमृत वेला बहुत सुंदर हो जाएगा। सभी इस पे ध्यान दें। इसके लिए चाहे रात को आप अपने भोजन को रीसेटल करें, भोजन फिर से सोचें हमें क्या खाना है, क्या नहीं और कितना। जिनकी आयु बढ़ गई है वो आधा कर दें रात का भोजन, यंग लोगों की बात नहीं, जिनकी आयु बढ़ गई है। जो यंग हैं वो 3/4 खाएं, थोड़ा सा कम करें, भारी ना हो, शरीर भारी ना हो ताकि कमजोरी भी ना आए। एक डॉक्टर मुझे मिला 72 साल का, बड़ा चमकता था उसका चेहरा, ज्ञानी। मैंने कहा बहुत अच्छा अभ्यास करते हो, चेहरा चमक रहा है। कहता अभ्यास तो मेरे अच्छे हैं पर मैंने एक काम और किया हुआ, एक टाइम भोजन का। जब से मैं 60 साल का हुआ मैंने एक टाइम भोजन, 2 टाइम फ्रूट। मैंने कहा डॉक्टर तो कहते हैं रात को फ्रूट न खाओ। अरे मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे पता है खाना चाहिए, मैं फ्रूट और दूध लेता हूँ रात को। तो इतना अच्छा था उसका, क्योंकि बॉडी ठीक रहना, बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस न हो तो विचार बहुत सुंदर होते हैं। इस पे सभी ध्यान देंगे। उठते ही पहले 10 मिनट आप स्वयं को चार्ज करेंगे, ये सब आदत डाल लें। अपने पास कोई अच्छे 10 संकल्प लिख लें और जो बाबा को गुड मॉर्निंग करने के साथ शुरू कर दें। जैसे मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूं, दिल से बिल्कुल आवाज आए। उठते ही अगर हम ये संकल्प कर दें तो जैसे भाग्य के द्वार खुलेंगे। मैं बहुत खुश नसीब हूं, मेरे जैसा खुश, मेरे जैसा सुखी चारों युगों में, तीनों लोकों में कोई नहीं। और अगर कोई अकेले हो तो हाथ ऐसे करके भी कर सकते हैं, जैसे आप आकाश में हैं, फरिश्ते आकाश में हैं और वहां ये अभ्यास कर रहे हैं। मेरा चित्त संपूर्ण रूप से शांत है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो इस धरा पर फरिश्ता हूँ, मैं तो इस संसार के लिए वरदान हूँ। सुंदर विचार। इसको आप योग से अलग न समझें, ये योग है। इसे ब्रेन भी चार्ज होगा, मन भी चार्ज, बुद्धि भी चार्ज, बॉडी भी चार्ज। आप देखेंगे इससे बॉडी चार्ज होता है, आप फ्रेश होंगे, आपको सोने को मन नहीं करेगा। बिल्कुल आप अनुभव करके देख ले, कोई भी व्यक्ति अगर 10 मिनट इस तरह सुंदर विचार कर ले, जैसे आकाश में हूं मैं फरिश्ता, भले वही विचार आप रिपीट करो, 7-7 बार रिपीट कर दो, तो नींद नहीं आएगी बाद में भी, बहुत चार्ज हो जाएंगे। ये काम सबको करना, फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास और अपने 45 मिनट के योग को कुछ हिस्सों में बांट लो। 5 स्वरूपों का अभ्यास, सुख संवतन में बाबा के सामने, बाबा का हाथ सिर पर, दृष्टि लेनी है बाबा से, संसार को दृष्टि देनी है वहीं से। बहुत सुंदर बात है। याद होगा आपको आजकल की मुरली के वरदान में आ रहा था, कल था शायद, संसार दिव्य बुद्धि के विमान से संसार में चक्कर लगाओ और क्या करो, देख रेख करो। जैसे एक फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री की देख रेख करे, एक बिजनेस वाला अपने सारे बिजनेस की देख रेख करे, एक बाप अपने अब सभी बच्चों के कारोबार की देख रेख करे, कौन हो गए हम? कौन हो गए? पूर्वज, बड़े हैं जिन्हें देख रेख करनी है। क्या याद दिला रहा है बाबा? तुम बड़े हो, मालिक, जिम्मेदार, संसार के ही मालिक हो, संसार का कल्याण तुम्हारे हाथ में है। रियलाइज कराता है, महसूस करो तुम कितने बड़े हो। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, देख रेख करो। पहले भी सुना था लेकिन कल बहुत अच्छा लगा, देख रेख करो। तो सवेरे दृष्टि लें बाबा से, दें फिर बीज रूप, फिर सकाश देना। ये 4-5 हिस्सों में अमृत वेले का योग होना चाहिए। लास्ट एंड हो योग का बाबा को सच्चे दिल से थैंक्स। ये नहीं बाबा थैंक्स आपको, इतना नहीं, आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे ये दिया। एक एक चीज के लिए, जैसे वतन में हैं हम बाबा के सामने, वहां बाबा को हम एक एक चीज याद करके थैंक्स दे रहे हैं। आपने हमें नवजीवन दिया, आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। आपने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया, हमारे मन के अंधकार को मिटाया, आपको बारंबार शुक्रिया। आपने हमें शक्तियां दी, हमारा भय दूर किया, हमारे मन के मैल मिटा दिए, आपको लाखों लाखों बार शुक्रिया। ऐसे बहुत सुंदर योग होगा तो हम मन को आनंदित अवस्था में करके उठेंगे वहां से, फिर आप देखो कितना अच्छा सारा दिन बीतता है। फिर दिन की दिनचर्या हम बना लें। अब मैं आपको पॉइंट्स लिखा देता हूं, आप लिख लें जो भी दिन मन की दिनचर्या बनाना चाहें। मुझे याद तो है, फिर भी मैंने कुछ नई भी लिखी थी। एक 500 रूपों का अभ्यास, किसी काम में या किसी घंटे में केवल भविष्य के नशे में रहना। 500 रूपों को अलग अलग बांट लेते हैं। भविष्य का नशा, ब्रह्मा बाबा की तरह। दूसरी पॉइंट, मैं फरिश्ता हूं, लाइट हाउस माइट हाउस, पवित्रता का फरिश्ता। इन सब पॉइंट्स को बहुत सहज लेना है, टेंशन नहीं, बिल्कुल सहज। मैं फरिश्ता हूं, क्या हूं फरिश्ता, मैं तो हूं नहीं, ये सब नहीं, मैं फरिश्ता हूं, लाइट हाउस माइट हाउस, लाइट फैल रही है मुझसे। कई लोग बड़ी टेंशन बना देते हैं। रोज एक दो भाई बहन ऐसे आते हैं जो कहते हैं योग जितना ज्यादा करते हैं सिर दर्द होता है। मैं पूछता हूं क्या के खींचते हैं, थोड़ा ऊपर खींच रहे हैं, खींचने की बात ही नहीं है, बिल्कुल सहज है। तीसरी बात, मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूं। आप किसी कर्म में ये दो दो बार भी याद कर लेंगे तो देखेंगे कर्म पर क्या इफेक्ट है। मैं आत्मा चमकती मणि स्वराज्य अधिकारी हूं। बाबा मेरा है, मेरा खुदा दोस्त है, मेरे साथ है। तीनों बातें, बाबा मेरा, मेरे साथ, उसका हाथ मेरे सिर पर, खुदा दोस्त। किसी कर्म में बाप दादा का आह्वान, बुलाएंगे बाबा को, देखेंगे बाबा आ रहा है, ऊपर से आ गया हमारे सामने, उसकी किरणें फैल रही हैं, कभी सामने खड़ा दृष्टि दे रहा है, कभी उसकी हजार भुजाएं उसने मेरे सिर पर कर दी हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं, मैं शक्तियों का मालिक हूं, मालिकपन की फीलिंग। मैं एक महान आत्मा हूं, बहुत डीप फीलिंग, भगवान ने मुझे चुना है किसी विशेष काम के लिए। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस, मैं बाप समान हूं, साक्षी दृष्टा हूं, साक्षात्कार मूर्त हूँ। एक और प्रैक्टिस, संसार का ये नाटक पूरा हो रहा है, अब मुझे सब कुछ छोड़कर घर जाना है। दो बहुत पावरफुल प्रैक्टिस, सर्वशक्तिवान पर बुद्धि को एकाग्र करना। और उससे किरणें लेना, शक्तियों की किरणें। एक और प्रैक्टिस, ग्लोब को और प्रकृति को सकाश देना। आज मैंने एक और प्रैक्टिस जोड़ी अपने इसमें, बहुत अच्छा लगता है उससे। मैं आत्मा परम पवित्र यहाँ हूँ और मुझसे पवित्र किरणें ब्रेन में और सारे शरीर में फैल रही हैं। बॉडी को प्योरिफाई करना। ये सब प्रैक्टिस हैं, बहुत हो गई ना, इनको आप जोड़ लें। एक और बहुत अच्छी हमारा स्वमान है, मैं विजयी रत्न हूं। संकल्प कर दो गोल्ड मेडल लेने वाला, गोल्ड मेडलिस्ट। अपना प्रोग्राम फिक्स करें, जो हम विजन बनाते हैं ना, अपना लक्ष्य बनाते हैं, उसकी बहुत मदद है जीवन में। अगर हम उस पर अपने को बिल्कुल केंद्रित करें, उसको पाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास करें, तो बहुत सहज सफलता उससे हमें होती है। ये दिनचर्या बनाएंगे स्वयं। और आप में से जो बहुत तेज पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अपनी इस मन की दिनचर्या को रोज सवेरे लिखो एक बार, आज का प्रोग्राम, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज भी होता रहेगा। रोज लिखना, हम लिख के रख भी सकते हैं 15 दिन के लिए अपने पास, उसका इफेक्ट, और हम रोज लिखें उसका इफेक्ट आप अलग अलग देख सकेंगे। रोज रोज, और हम सबको ये करना है, आपने शुरू किया होगा, नहीं किया तो कर लें, रोज रात को बाबा को बताना है, बाप समान बनना लक्ष्य है, गोल्ड मेडल लेना लक्ष्य है, ये हुआ ये नहीं हुआ आज, नहीं भी होगा कुछ कुछ, सब बता देना आज ये नहीं हुआ, आज यहाँ गड़बड़ हो गई और कल से ये ठीक। ऐसा दृढ़ संकल्प हम बहुत अच्छी तरह करेंगे। पसंद है? इस मुरली की भी मुख्य पॉइंट्स सभी अपने पास नोट करेंगे। ये बात आप सबको करनी है, सबको, जो बाबा की अव्यक्त मुरली चलें एक दो दिन में ही, उसके मुख्य पॉइंट्स अलग से मोटे अक्षरों में लिख के रखनी है। मोटे अक्षर में क्यों कहता हूँ, ऐसा आप लिखें जो आपको भी पढ़ने को मन करे। कोई कोई ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं कि खुद ही जब देखते हैं तो कॉपी बंद कर देते हैं, क्या इसमें है, कुछ तो है नहीं। आप सुंदर लिखें, ये भी तो भगवान के महावाक्यों का सम्मान है ना, प्यार है ये भी उससे, सुंदर ढंग से। जैसे यही है कि जितनी बड़ी प्रारब्ध तुम्हें मिलनी है, शिक्षक के रूप में बाबा बोल रहे थे ना, जितनी बड़ी प्रारब्ध तुम्हें मिलनी है उसके हिसाब से एक एक मिनट कितना इम्पोर्टेंट है। मैं स्टूडेंट से सदा ही प्रेरणा लेता हूँ, मेरे पास आते रहते हैं यंग स्टूडेंट्स, मैं उनसे पूछता हूँ कितनी मेहनत कर रहे हैं वो एक हायर कंपटीशन देना। आजकल बहुत एग्जाम है ना, गेट नेट पता नहीं क्या क्या है, उन सबको क्लियर करने के लिए वो अपना कोचिंग कर रहे हैं, दूसरे शहरों में जाके रह रहे हैं, आठ आठ मास पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं, फिर असफल हो रहे हैं, दोबारा दे रहे हैं, कितनी मेहनत। और हम राजा ही पानी है। बाबा ने देखो टोपी को महत्व नहीं दिया, परसों ध्यान ही नहीं दिया क्या कह रहे हैं, सुन ही नहीं रहा भगवान। जैसे उस दिन दो चीजें आप सबने नोट की होगी, एक टोपी को महत्व, उसको लग रहा होगा मैं इन्हें ताज देने आया हीरो का, ये टोपी पहन के खुश हो रहे हैं, लगता होगा ना कि इनको नशा ही नहीं चल रहा अब तक। ठीक है डिप्लोमा करना वो करना वो भी एजुकेशन है, अच्छी बात है, लेकिन वही तो हमारा लक्ष्य नहीं है ना। हम उसमें लगे रह गए और समय बीतता जाएगा। देखो भगवान जो कुछ कह रहा है वो सिग्निफिकेंट है, रहस्य भरा हुआ है, कई लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान बोल रहा है, अचानक होना है, समय नाजुक आ रहा है, समय की गति बढ़ती जा रही है। हम लोग इसको सहज ले लेते हैं कि बाबा तो बोलता ही आ रहा है, 40 साल पहले बोला था, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं। लेकिन भगवान जो बोल रहा है वो बिल्कुल रहस्य भरा है, ये बाबा के अच्छे बच्चों को समझ लेना चाहिए। दूसरा, बाबा ने सेवाओं में किसको महत्व दिया? विंग वालों को बुलाया था ना ऊपर, वो तो खुश हो गए, आज तो प्रभु जी राजी हैं, हमें बुला लिया ऊपर, बड़ा अच्छा दृष्टि मिलेगी, अच्छा होगा। और बाबा उनकी कुछ सुन ही नहीं रहा था, बारिश निकालो, क्योंकि क्या है, बहुतों ने अपनी सेवा का जो स्वरूप है वो टर्न कर दिया है लोगों को खुश करने के लिए, भाई हम भी कुछ समाज सेवा कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए केवल। लेकिन यहां तक तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता, बाबा यहां से तो खुश नहीं होता, उसको तो चाहिए उसके जो बच्चे हैं। अब देखो हमारे देखने में और उसके देखने में कितना अंतर है, वो ऊपर से देखता है कि मेरे बच्चे वहां 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 मुझसे मिलने के लिए तड़फ रहे हैं, और ये मेरे बच्चे हैं उन तक जाते ही नहीं, पर्यावरण सिखा रहे हैं, उन्हें बताते ही नहीं कि असली चीज क्या है, उसे वहां से कुछ और दिखता है ना जो हमें नहीं दिखता है। कितने उसे पुकार रहे होंगे, और धर्मों में भी चले गए, उनको अंदर से फीलिंग हो रही होगी अब, क्योंकि वापिस वहीं आना है अपने मूल धर्म में। पता है ना सबको, सभी आत्माएं कल्प के अंत में अपने मूल धर्म में वापिस आ जाती हैं। तो कुछ ना कुछ कारण बनेगा, तो बाबा हम सबसे ये चाहते हैं हम अपनी स्थिति से भी ऐसी अच्छी सेवा करें। सवेरे का महत्व क्यों है बहुत ज्यादा, इस बात पे जरा अंडरलाइन करके ध्यान दें, क्या कहा बाबा ने? हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हैं, भूल गए बोलो बोलो बोलो, नहीं एक नहीं बोला अब तक, बाकी बोले तुम चुप रहना भाई, बोलो क्यों सवेरे को महत्व दिया? उस टाइम हमारी सका संसार में इजीली पहुंचती है, क्योंकि उसको रोकने वाला कुछ नहीं है ना सवेरे, जो रोकने वाले वो सोए हुए हैं सब, उनके वाइब्रेशन से ही नहीं है चारों ओर, तो क्लीन है एकदम वातावरण। तो जो भी हमारी सुंदर सकास होगी वो फैलेगी, इसलिए अगर सवेरे उठते ही कल से हम सब अभ्यास कर दें, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं, फैल रही हैं किरणें, तो उनको रोकने वाली कोई चीज है ही नहीं ना सवेरे। दिन में तो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, न जाने कितनी गंदगी वातावरण में है। हमारे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस ही काम कर सकते हैं दिन में, तो सवेरे हल्के वाइब्रेशंस भी दूर दूर तक फैलेंगे, इस पर हम बहुत ध्यान देंगे। तो बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, अब हमें अपनी पालना स्वयं करनी है। मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है 2012 के बाद स्थापना कार्य में एक महान टर्न आने वाला है। विनाश की बात नहीं, वो तो बाबा को भी आपने देखा, दादी ने पूछा और बाबा ने सुना ही नहीं। कौन सी बात? 2012। हाँ 2012, क्योंकि भगवान अगर कुछ बोल दे कि कुछ तो होगा, तो जो भीड़ अब 20-25 हजार की आ रही ना, वो 50 की हो जाएगी। खाना कहाँ खिलाएंगे? उसे ये पता है। ये जो ब्राह्मण भाग के आ रहे हैं, ये इसीलिए तो आ रहे हैं, 2012 का जलवा है, और पूरा होते ही ये संख्या आधी हो जाएगी फिर से। यार कुछ तो होता ही नहीं, छोड़ो। तो ब्राह्मणों में जागृति किसी न किसी तरह से बाबा दिलाता है, लेकिन कुछ तो होगा। मैं हमेशा भविष्य को विनाश की दृष्टि से नहीं देखता, स्थापना की दृष्टि से। जय जयकार, अभी तो बड़े बड़े काम बाकी हैं। अभी तो द्वापर और कलयुग भक्ति का पार्ट भी रिकॉर्ड होना है आत्माओं में। जय जयकार का एक लंबा चौड़ा रोल बाकी है, जब हरेक आत्मा दिल में स्वीकार करेगी मेरा बाबा। केवल आ ही नहीं गया, मेरा इस गुड फीलिंग में आ जाएगी। अभी तो काम बाकी है, 2012 के बाद ये काम शुरू होगा, और इसके लिए बाबा कुछ आत्माओं को तैयार कर रहा है बाप समान बनाने के लिए। देखो सब जानते हैं कि सबके बस का ये नहीं है, जानते हैं ना, फिर भी बाबा जोर दे रहा है। उसकी नजरों में कोई कोई है, उन्हें ध्यान में रख के वो बोल रहा है हर चीज। उनकी छोटी सी कमी को भी नोट डाउन करा रहा है, ये कमी है इसको हटाओ, और वो उसको समझ रहे हैं। इसलिए जोड़ लगाएंगे सभी। हम बाप समान नहीं बन पाएंगे इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं, हमें अपना लेवल तो बढ़ाना है ना, किसी लेवल तक तो हमें पहुंचना है। तो अब बाबा के आने तक हमारे स्वमान होंगे, लिख लें सभी इसी मुरली से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं बाप समान, और मैं पूर्वज हूं। बड़े एकदम हम बड़े हो गए, तो जितने बड़े हम हैं उतने ही बड़े हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार उस अनुरूप, ढीला नहीं। और पूरे कितने दिन है, आज 3 तारीख हो गई, 12 दिन है हमारे पास। 5 संकल्प लिख लें आप पुरुषार्थ के लिए, चिंतन के लिए। वैसे तो दिनचर्या से सब पूरा हो जाता है, फिर भी जस्ट फॉर अटेंशन, मैं बाप समान तपस्वी हूं। यहां ब्रह्मा बाबा को सामने लाएंगे। मैं बाप समान निरहंकारी हूं। मैं बाप समान मीठा हूं। मैं बाप समान पवित्र हूं। एक आप बोल दें, मैं बाप समान, बोलो क्या जोड़ेंगे? रहम दिल हूं। तो रहम दिल वालों की भावनाएं महान हो जाती हैं, बहुत प्यार से भरी हुई देने वाली भावनाएं। इन 5 बातों को भी ख्याल में रखेंगे चिंतन में, और बाप समान तपस्या ये दिनचर्या बनाएंगे तो योग बहुत सुंदर हो ही जाएगा। मेरा ये अनुभव है, मैं बहुतों से कराया है, अगर कोई ऐसी दिनचर्या का चार्ट 6 मास कर ले तो उसको जीवन में सदा के लिए उड़ती कला हो जाती है। विघ्न बाधाएं ये वो संस्कार स्वभाव सब पीछे हट जाते हैं। तो सभी बहुत दिल से करेंगे, एक बार फिर हम मिलेंगे, ठीक है? सभी के मन में उमंग है ना, समय और संकल्प बहुत कीमती है। साथ में एक अभ्यास और जोड़ लेंगे इस बार, सोने से पहले भी बाबा को सच्चे दिल से केवल गुड नाइट नहीं करना, चाट भी देना है और धन्यवाद दे के सोना है। इसका अनुभव सभी देखें और अनुभव ये देखें जिस चीज के लिए हम दिल से बाबा को धन्यवाद देंगे वो चीज बढ़ती जाएगी। सूक्ष्म साइकोलॉजी है इसके पीछे, वो बढ़ती जाएगी तेजी से। ओम शांति। चलो बाबा समान तपस्या। एक बात और मुझे भूल गई लिखानी थी, पांच हो गई थी ना, छठी और लिख लें। बाबा समान रहम दिल जैसे लिखा ना, रहम दिल और साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा, पांच में ही कर लें। बाबा जैसे रहम दिल और साक्षी दृष्टा। चलो भाई लाल लाइट कर दो।
खुशी।